एक ज़माने में बादशाह और राजा मुल्कों पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजाओं और बादशाहों का दौर ख़त्म हो गया है। अब अवाम ख़ुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं, ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते और अवाम के मसाइल हल करते हैं। नुमाइंदे चुनने के इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। अवाम को चाहिए कि वो सोच समझ कर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। आपने देखा होगा इलेक्शन के ज़माने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं, उम्मीदवार अवाम के सामने तकरीर करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी जादूगरों का इलेक्शन सुनने वाले हैं, जिसे कृष्णचंद्र ने लिखा है। आप सुन रहे हैं उर्दू अदब पॉडकास्ट और मैं हूं ख्वाजा मोइनुद्दीन। कृष्णचंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में एक इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम पूंछ कश्मीर में हुई। 1934 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ अरसे तक वो लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में खिदमत अंजाम देते रहे। 1969 में उन्हें पद्म भूषण का एजाज़ मिला। कृष्णचंद्र ने नावल, ड्रामे, मजामीन और अफसाने सभी कुछ लिखा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। शिकस्त, हम वहशी हैं, हवाई किले, एक गधे की सरगुजिश्त और उल्टा दरख्त वगैरह इनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। उनका इंतकाल 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुआ। ज़ैल का सबक कृष्णचंद के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है, जिसमें जादूगरों को अवाम से वोट मांगते हुए दिखाया गया है। तो आइए सुनते हैं जादूगरों का इलेक्शन कृष्णचंद्र के ज़रिए लिखा हुआ। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियाँ हिलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी इन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। मजमुआ ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा था, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। मजमुआ नारे लगाता, झंडियाँ हिलाता शहर के एक बड़े चौक में पहुँचा। यूसुफ ने देखा लोग भूखे नज़र आ रहे हैं, उनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, फिर भी वो खुश हैं। यूसुफ ने पूछा, भाई क्या माजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं, आज जादूगरों का इलेक्शन है। वो देखो, सामने अलादीन अपना चिराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा वाकई बड़े बड़े रंगारंग झंडों के दरमियान अलादीन खड़ा तकरीर कर रहा है। भाई और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ, मैं एक दर्जी का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ, मुझे मालूम है तुम लोग भूखे हो, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, बच्चों के लिए तालीम नहीं है, पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वो सोने के देव की हुकूमत थी। मैं अपने जादू के चिराग की मदद से तुम्हारे लिए हर तरह के ऐश का सामान मुहैया करूँगा, देखो मेरे जादू के चिराग के करिश्मे। ये कहकर अलादीन ने चिराग को अपने हथेली से रगड़ा। फौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नजर आया और कहने लगा, अलादीन क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मैं शहर के बेघर लोगों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूँ, ज़रा एक महल तो लाके दिखाओ। जिन गायब हो गया। दूसरे लम्हे वही जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला चमकता हुआ महल लिए हाजिर हुआ। लोगों की निगाहें उस खूबसूरत महल की तरफ खींची चली गई। महल के दरवाजे खुलते थे, खिड़कियाँ खुली थीं, महल के अंदर रोशनियाँ जगमग जगमग कर रही थीं। खूबसूरत कालीन और सोफे बिछे थे, मेज़ों पर तरह तरह के फल चुने हुए थे, पुलाव, मंजतन, जरदे, कौरमे, तरह तरह की सब्जियाँ, फालूदे, फिरनियाँ, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेज़ों पर रखी हुई लोगों को नज़र आ रही थी। लोगों की राल टपकने लगी, लाखों गलों से आवाज़ आई, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद, एक वोट एक मुल्क, एक अलादीन एक चिराग। यकायक अलादीन ने ताली बजाई। जिन अपने महल समेत गायब हो गया। अलादीन ने कहा, पहले मुझे ओढ़ दो, फिर ये महल तुम्हें मिलेगा। लोग धड़ाधड़ ओढ़ देने के लिए जाने लगे। यकायक दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लोगों बेवकूफ़ ना बनो, ये अलादीन दर्जी का बेटा तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। असली जादू तो मेरे पास है, जादू की टोपी, सुलेमानी टोपी। मजमुआ दूसरी तरफ पलटा, जहाँ एक बहुत बड़े बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़े चबूतरे पर दो दर्जन लाउड स्पीकरों के सामने एक जादूगर सुलेमानी टोपी हाथ में लिए तकरीर कर रहा था। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उधर चले गए। वो कह रहा था, अलादीन ठग है, उसे हरगिज़ वोट ना देना। अलादीन का चिराग पुराना हो चुका है, उसका जिन भी बुढ़ा हो चुका है। इतने दिनों में वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, अब क्या करेगा? अब के तुम मुझे वोट दो, क्योंकि मेरे पास सुलेमानी टोपी है। मोहन ने कहा, इस टोपी में क्या ख़ास बात है? मुझे तो सीधी सादी सफ़ेद रंग की टोपी दिखाई देती है। जादूगर ने मोहन की बात सुन ली। वो वहीं चबूतरे से चिल्ला कर बोला, ये कोई मामूली टोपी नहीं है, इसे पहनकर आदमी यूं गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सिंह। देखो देखो, सुलेमानी टोपी का कमाल देखो। ये कहकर जादूगर ने सुलेमानी टोपी पहन ली और मजमुए के दरमियान से गायब हो गया। अब सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। देखा, ये सुलेमानी टोपी का कमाल है। जादूगर ने सर से टोपी उतारी और अब वो लोगों को नज़र आने लगा। इस टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है, वो जहाँ चाहे बगैर टिकट के जा सकता है और उसे कोई टोकने वाला नहीं। इस टोपी को पहनकर आदमी बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है। इस टोपी को पहनकर आदमी वजीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। ये सुलेमानी टोपी है। उसके सामने अलादीन का चिराग बिल्कुल हीच है, उसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी जिन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बस उसे सर पर पहन लीजिए, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। फिर अलादीन के पास एक ही चिराग है, लेकिन मैंने सबके फ़ायदे के लिए हज़ारों सुलेमानी टोपियां तैयार कराई हैं। आइए मुझे वोट दीजिए और एक सुलेमानी टोपी लेते जाइए, एक वोट एक सुलेमानी टोपी। लोग वोट देने के लिए भागने लगे और शोर मचाने लगे। सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, अलादीन का चिराग मुर्दाबाद, सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, अलादीन का चिराग मुर्दाबाद। हा हा हा, तीसरे चबूतरे से एक ज़ोरदार खैखहा बुलंद हुआ। सब लोग उधर देखने लगे। वहाँ एक और जादूगर सर पर सफ़ेद कागज़ की टोपी रखे, सफ़ेद कागज़ का कोट पहने, आँखों पर चश्मा लगाए, हाथ में अखबार लिए हंस रहा था और कह रहा था, दोस्तों ये सुलेमानी टोपी वाला बहरूपिया है, बहरूपिया। ये खुद तो वोट लेकर गायब हो जाएगा और आपको कपड़े की टोपियाँ दे जाएगा, चाहे आप इनको सर पर पहने, चाहे थैली बनाकर घर ले जाइए। दोस्तों ये सुलेमानी टोपी किस काम की? गायब होकर आप क्या करेंगे? अगर आपको इस जादू की दुनिया में रहना है तो सच्चा जादू तलाश करें। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो सच्चा जादू तलाश करने की कोशिश कीजिए और सच्चे जादूगर को अपना बादशाह बनाइए। मुझे देखिए, मेरा जादू किसी को गायब नहीं करता, कोई हवाई महल नहीं दिखाता। मैं अभी आपके सामने वो चीज़ रखता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। जादूगर ने उंगली से एक आदमी की तरफ इशारा किया, कहो तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे अपनी ज़मीन में कुआं चाहिए। जादूगर ने अपने चबूतरे पर पड़े कागज़ के अंबार में से एक बड़ा सा कागज़ निकाला और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और उस आदमी को दे दिया। यकायक उससे बंजर खेतों के बीच में कुआं नज़र आया। कुएं पर रेहट चलने लगा, पानी फव्वारे की तरह निकलकर खेतों को सैराब करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने देखा, उसके झोंपड़े से उसकी बीवी निकली, पानी का घड़ा लिए हुए। बीवी ने मुस्कुराकर खाविन की तरफ देखा और खाविन उसी वक्त वो कागज़ हाथ में लेकर अपने घर की तरफ भागा। वो भागता जाता था और कहता जाता था, मुझे मेरा कुआं मिल गया, तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर ने दूसरे आदमी से पूछा। उस आदमी ने कहा, हमारे कस्बे में कोई स्कूल नहीं है। जादूगर ने कागज़ का दूसरा पुर्जा उठाया और उस पर मंत्र पढ़कर फूका और फिर वो पुर्जा उस आदमी के हाथ में दे दिया। आदमी उसी वक्त वो कागज़ अपने हाथ में लेकर वहाँ से भागा। भागते भागते वो कह रहा था, हमें स्कूल मिल गया, हमें स्कूल मिल गया। फिर क्या था, मजमुआ जादूगर पर टूट पड़ा। एक बोला, मुझे जूता चाहिए। जादूगर ने उसे कागज़ का पुर्जा दिया। दूसरा बोला, मुझे मोटर चाहिए। तीसरा बोला, हमें अपने गांव में एक अस्पताल चाहिए। मोहन ने यूसुफ से कहा, तुम्हें कागज़ पर कुछ नज़र आता है? यूसुफ ने कहा, मुझे तो सफ़ेद कागज़ ही नज़र आता है। मोहन ने कहा, मुमकिन है इन लोगों को कुछ नज़र आता हो। अगर ये मान लिया जाए कि उन्हें कुछ नज़र आता है तो आखिर कागज़ ही पर नज़र आता है ना, उसकी हकीकत क्या है? यूसुफ ने उस आदमी को बाजू से पकड़ लिया जिसने जादूगर से जूता मांगा था और उससे पूछा, तुम्हें जूता मिल गया? उस आदमी ने बड़े गुस्से से कागज़ का पर्जा यूसुफ के मुंह के सामने लाकर कहा, देखते नहीं हो, मिल गया है, ये देखो। यूसुफ को सफ़ेद कागज़ ही नज़र आया। यूसुफ ने कहा, अगर ये जूता है तो उसे पहन कर दिखाओ। उस आदमी ने कागज़ के टुकड़े को अपने पैर में पहनने की कोशिश की, कागज़ भी इससे फट गया। चर की आवाज़ सुनते ही जादूगर ज़ोर से गरजा, कौन हकीकत पसंद घुस आया है हमारे जादू की दुनिया में? उसे जल्दी निकालो वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा, हमारा जादू सब ख़त्म हो जाएगा। इतना सुनते ही अलादीन, चिराग वाला, सुलेमानी टोपी वाला, जादू के कागज़ वाला और उनके हिमायती यूसुफ, मोहन और शहज़ादी के पीछे भागे। वो तो खैर हुई कि यूसुफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने जल्दी से सुलेमानी टोपियों के बंडल में से 3 टोपियाँ निकाली और उन्हें पहनकर तीनों मजमुए के बीच से गायब हो गए।